Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Svetashvatara Upanishad, Chapter 5 and 6, presented by Swami Sri Atmananda Giriji. Thank you. Om Namah Shivaya.
Eneva yata yatayo asyaparam tameva margam tava nirdishami. शंकराचार्य विवेक चूड़ामणि में कहते हैं, संसार से दुखी होकर संतप्त हुआ हुआ शिष्य जब गुरु के पास शंकराचार्य के पास जाता है, कहता है कि महाराज, ये संसार दावानल अग्नि से मैं तपता जा रहा हूं और इस संसार दावानल अग्नि से बचने का मुझे कोई उपाय नहीं सूझ रहा है। आपके पास कोई उपाय हो तो मुझे बताइए, मेरी रक्षा कीजिए इस समय। तो शंकराचार्य ने कहा, मा भ्रष्ट विद्वान तव नास्ति अपाय। हे शिष्य, तुम इस संसार दावानल से बचने की इच्छा करते हुए तुम मेरे पास आ गए, तुम ठीक जगह पर आ गए हो, इसलिए अब यहां आ जाने के बाद अब मेरा क्या होगा यह चिंता तुम छोड़ दो, अब आगे का काम हमारा है। एवैव याता यतयो अस्य पारम, इस संसार दावानल से जिस युक्ति से जिस उपाय से महापुरुषों ने इस दावानल का अतिक्रमण किया, इससे पार हो गए हैं, ये शिष्य मैं वही उपाय तुम्हें बताने वाला हूं, इसलिए अब चिंता मत करो, तुम ठीक समय में आ गए हो, ठीक जगह आ गए हो। और शंकराचार्य ने तो यहां तक कहा, तुम निरंतरता और धैर्य पूर्वक यहां रहना मेरे सान्निध्य में, और मैं तुम्हें तब तक उपदेश करता रहूंगा जब तक तुम्हें वो लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होगी, तब तक मैं उपदेश करता रहूंगा। ऐसा कहने वाला गुरु कहीं मिलना चाहिए भाई। तुम्हारे लक्ष्य जब तक तुमको प्राप्त नहीं होगी तब तक मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तब तक मैं उपदेश करता रहूंगा, इसलिए निश्चिंत होकर बैठो। तो श्वेताश्वत ऋषि ने जिन साधनों से प्राप्त किया उस साधन को यहां बताया गया, और इसके द्वारा हमें यही संदेश दिए रहे हैं उपनिषद कि हमको भी उन्हीं साधनों के द्वारा ब्रह्म विद्या प्राप्त करनी चाहिए, उसका कोई दूसरा विकल्प नहीं है, यहां इसका कोई विकल्प नहीं है। जैसे किसी को ज्यादा मधुमेह हो तो डॉक्टर पहले उसको कहते हैं गोली खाओ, इतनी एमजी के इतनी मात्रा में इतनी डोज तुम गोली खाओ, और जो वो गोली खाते हुए भी कंट्रोल में नहीं होता है तो रोगी कहता है कि महाराज, ये दवाई खाकर भी कंट्रोल नहीं हो रहा है, क्या करें। फिर डॉक्टर उसका विकल्प कहता है कि इंजेक्शन लगाओ, वहां विकल्प है, यहां विकल्प नहीं है। वहां गोली की जगह इंसुलेंस है, टिकड़ी की जगह सुई है, यहां ऐसा नहीं है। महाराज, हमसे तपस्या भी नहीं होती है, हमसे पूजा पाठ भी नहीं होता है, हम कुछ नहीं कर पाएंगे, ऐसा कोई उपाय बताओ कि जिससे ब्रह्म विद्या हमारे हृदय में फलीभूत हो जाए। तो कैसे चाहोगे, कोई इंजेक्शन? ब्रह्म विद्या का ऐसा तो है नहीं कि इंजेक्शन से आपको दिया जाए और आप आराम से उस भूमिका में पहुंच जाओ। तप प्रवाह वा देवता प्रवाह प्रसादाच, हा प्रसिद्धि है, सभी ने इसी तरह प्राप्त किया है, केवल श्वेताश्वत ऋषि ने नहीं है, शंकराचार्य जी ने, वामदेव ने, ऋषभदेव ने, ऋभु ने, सनत कुमारों ने, सब ने इसी तरह प्राप्त किया है। इस जन्म में नहीं तो पहले जन्म में इन साधनों को किया है, सुखदेव ने इस जन्म में तो नहीं किया, इसका मतलब ये नहीं समझ लेना कि इन साधन की आवश्यकता नहीं है। सुखदेव जी की साधन पहले जन्म की है, पहले उन्होंने तपस्या की, पहले उन्होंने ईश्वर की उपासना की, और उसी जन्म में किसी प्रतिबंधक के चलते उनको पुनः शरीर ग्रहण करना पड़ा था, वो प्रतिबंधक शरीर ग्रहण के साथ ही नष्ट हो गया है, तब उसके बाद वह तपस्या का प्रभाव और उस ईश्वर उपासना का प्रभाव यह हुआ कि उनको गर्भ में ही ब्रह्म विद्या साक्षात्कार हो गया। वामदेव जी को गर्भ में ही वो ब्रह्म विद्या प्राप्त हो गई, सुखदेव जी को गर्भ में ही ब्रह्म विद्या प्राप्त हो गई। जन्म लेने के बाद वर्ण आश्रम धर्म को स्वीकार करके, उससे तपस्या करके, ईश्वर उपासना करके तब ब्रह्म विद्या प्राप्त की है, ऐसा नहीं है। लेकिन इससे पहले के जन्मों में उनकी साधन, इसलिए तो वेदांत हमारा वैदिक सनातन धर्म जन्मांतर की बात करता है, पुनर्जन्म की बात करता है। और जो पुनर्जन्म नहीं मानते हैं उनके लिए ये बड़ी समस्या, ये जटिल है, ये कैसे संभव है, प्रश्न कर देते हैं, ये कैसे संभव होगा। इसका समाधान पुनर्जन्म को मानना चाहिए, और पुनर्जन्म मानते हैं तो इसका उत्तर आ जाता है, अन्यथा नहीं मिलेगा। अत्याश्रमिभ्यः परमं पवित्रं पवाच सम्यग् ऋषि संघ जुष्टम। और श्वेताश्वतर ऋषि ने इस ब्रह्म विद्या को इन तपस्या और ईश्वर कृपा के प्रभाव से प्राप्त करने के बाद वह फिर दूसरों को दिया। किसको दिया? अत्याश्रमिभ्यः, जो आश्रमाभिमान से रहित हैं उन लोगों को दिया। उन लोगों ने श्वेताश्वत ऋषि से उस ब्रह्म विद्या को प्राप्त किया, ये परंपरा है। नारायणम पद्म भवम वशिष्ठम शक्तिम च तत्पुत्र पराशरं च, ये तो ब्रह्म विद्या की परंपरा है। अत्याश्रमिभ्य परमं पवित्रम, यदि किसी को ब्रह्मचर्य आश्रम का अभिमान हो तो वह ब्रह्म विद्या को प्राप्त नहीं कर पाएगा। गृहस्थाश्रम का अभिमान हो तो वो प्राप्त नहीं कर पाएगा। वानप्रस्थ का अभिमान हो तो प्राप्त नहीं कर पाएगा। सन्यासी आश्रम का अभिमान हो तो वो प्राप्त नहीं कर पाएगा। ब्रह्म विद्या प्राप्त करने के लिए वर्ण और आश्रमाभिमान को परित्याग करना ही पड़ेगा। यह आश्रम उपलक्षण है। अत्याश्रमी जो आश्रमाभिनिवेश में नहीं बैठा है, कहता कि मैं सन्यासी हूं, ऐसा नहीं, मैं गृहस्थी हूं, मैं वानप्रस्थी हूं, मैं ब्रह्मचारी हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं क्षत्रिय हूं, यही तो प्रतिबंधक है। अत्याश्रमिभ्य परमं पवित्रम, ये परम पवित्र ब्रह्म विद्या है। इसलिए तो गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कह दिया, दुनिया में ब्रह्म विद्या से बढ़कर पवित्रता और कोई भी नहीं है। नहीं ज्ञाने न सदृशम पवित्र मिह विद्यते, इस संसार में ज्ञान से बढ़कर और कोई पवित्र हो ही नहीं सकता है। यूं तो पवित्र तुलसी का पत्ता पवित्र है, तुलसी का पत्ता डाला हुआ जल पवित्र है, गंगा जल पवित्र है, शालिग्राम पवित्र है, ये सब पवित्र हैं, लेकिन ये सब तो भौतिक हैं। और इनसे भी बढ़कर पवित्र तो है ज्ञान, है ब्रह्म ज्ञान, आत्मज्ञान। नहीं ज्ञाने न सदृशम पवित्रम ही विद्यते। और क्योंकि आत्मज्ञान क्यों पवित्र है? क्योंकि ज्ञान सो परमात्मा है, और परमात्मा सबसे पवित्र है। पवित्राणम पवित्रम यो मंगलानां च मंगलम, विष्णु सहस्र नाम में बता दिया गया है। परमात्मा तो संसार में जितने भी प्रसिद्ध पवित्र हैं उन सारे पवित्रों में से भी परम पवित्र है। परमात्मा तो संसार में जितने भी मंगल हैं, शुभ हैं, उनका भी परम शुभ है। हम लोग कहीं तीर्थ यात्रा में या कहीं व्यवहार में घर से जब बाहर निकलने लगते हैं तो सगुन के लिए कुछ न कुछ खाते हैं या कुछ न कुछ करते हैं, शुभ के लिए, संकेत के लिए। गांव में ये परंपरा है। आप तो बंबई वासी हो गए, शहरवासी हो गए, महानगरवासी हो गए हैं, उन परंपरा से आपका क्या संबंध है? घर में घर से बाहर निकलते हैं किसी काम के लिए तो रास्ते में पूर्ण कलश पानी से भरकर रखा जाता है। वो सुबह का सुकून है, संदेशक है, शुभ सूचक है, मंगल सूचक है। आप लोग भी करते हो, दही खाकर निकलते हैं, कहीं निकलते समय दही खाकर निकलो, वो सुबह के लिए होता है, मंगलवासी है ये सब। अरे बाबा वो दही खाओ चाहे पानी का घड़ा रखो, यदि हृदय में परमात्मा का स्मरण नहीं है तो वो दही क्या काम करेगा? वो हृदय में परमात्मा का स्मरण नहीं है तो पानी का घड़ा क्या कर लेगा भाई? जो परम पवित्र मंगल तुम्हारे हृदय में नहीं है, बाहर के घड़े के सूचक से तुम मंगलता के क्या आशा कर लोगे? हृदय में परमात्मा का स्मरण नहीं है तो दही खाकर क्या कर लोगे? दही क्या कर लेगी? इसलिए तदेव लग्नम सुदिनम तदेव ताराबलम चंद्रबलम तदेव विद्याबलम दैवबलम तदेव लक्ष्मी पते तेंगरी युगम स्मरामि। हृदय में जब परमात्मा का स्मरण हुआ तो तारा ग्रह नक्षत्र सब अनुकूल हो जाते हैं। और हृदय में परमात्मा का स्मरण नहीं हो रहा है, बाहर के ज्योतिष से पूछेंगे कि किस समय शुभ घड़ी है, शुभ पल है, तो हृदय में परमात्मा का स्मरण नहीं है तो बाहर के शुभ घड़ी शुभ पल तुम्हारे लिए मंगल नहीं हो सकता है। तो ज्ञान पवित्र है, इसलिए यहां बताया कि ब्रह्म विद्या परमम पवित्रम, उस परम पवित्र जो कि अनादि कालुष्य उस अविद्या को भी नाश करने में समर्थ होने के कारण वो परम पवित्र है। गंगा जल पाप को तो नाश करे, पाप के बाप को नाश नहीं करेगा, पाप का बाप तो अविद्या है। तुलसी का पत्ता, तुलसी डाला हुआ पानी, भगवान विष्णु का चरणोदक, सप्त जन्म कृतम पापम नाशयति, सात जन्म के पाप तो नाश कर देगा, आठवें जन्म का क्या होगा है? फिर सबको नाश कौन करेगा? ये सब का मूल कारण जो अविद्या है उसको नाश करने वाला जो पवित्र है उसका सेवन करो तो बस पवित्र ही पवित्र, पवित्रता है ही नहीं। विद्यैव तन्नाश विदौ पडीयसी न कर्म तज्जम सविरोध मीरितम, ब्रह्म विद्या के अलावा उस पाप के मूल को नाश करने का और कोई क्षमता नहीं, इसलिए वो परम पवित्र है ब्रह्म विद्या। अत्र अत्याश्रमिभ्यः परमं पवित्रं प्रोवाच सम्यक ऋषि संग जुष्टम। और श्वेतासुत ऋषि ने यह आगे ब्रह्म विद्या किसी एक एक को नहीं दिया, ऋषि संग जुष्टम ऋषियों के समूह में सभी ऋषि एक साथ होकर बैठे हुए थे ब्रह्म विद्या के अनुसंधान में। किम कारणम, यहां से शुरू हुआ था श्वेता सूत्र उपनिषद। ब्रह्मवादी नो हो बदंती, बड़े बड़े ब्रह्मवादी लोग एक जगह बैठकर विचार कर रहे थे कि जगत का कारण क्या है। किसी ने कहा था काल, किसी ने कहा था नियति, किसी ने कहा था यदिच्छा, किसी ने कहा सब भूतानी यानी सभी भूत मिलकर ये जगत उत्पन्न हुआ। इस तरह बैठे हुए उस समूह में श्वेतासुत ऋषि ने इस ब्रह्म विद्या का उपदेश किया। प्रवाच सम्यक ऋषि संग जुष्टम, इसलिए कहा अत्याश्रमीभ्यः, शंकराचार्य जी ने वैराग्य और अत्याश्रमी के लिए यहां उदाहरण दिया। चतुर्विदा भिक्षवश्च बहुतक कुटीचक, हंस परमहंसश्च यो यः पश्चात स उत्तम। सन्यासियों के चार वर्ग हैं, चतुर्विदा भिक्षवश्च बहुतक कुटीचक हंस और परमहंस, ये सन्यासियों के चार वर्ग हैं। शंकराचार्य कहते हैं उनमें से पूर्व पूर्व की अपेक्षा उत्तर उत्तर का जो आज सन्यासी हैं वो उत्तम है। कुटीचक से उत्तम है बहुधक, बहुधक से उत्तम है कुटीचक, कुटीचक से भी उत्तम है हंस, हंस से उत्तम है परमहंस। परमहंस जो है वह अत्याश्रमी है। और आगे का, वैराग्यम पुष्कलम न स्यात् निष्फलम ब्रह्म दर्शनम तस्माद् रक्षेत विरतिम बुधो यत्नेन सर्वदा, यदा मनसि वैराग्यम जायते सर्व वस्तुषु तदैव सन्न्यसेत्, तदैव सन्न्यसेत् विद्वान् अन्यथा पतितो भवेत्। तो ये वैराग्य उसी को तप प्रवाहत और अत्याश्रम के द्वारा प्राप्त किया है, और ये ब्रह्म विद्या अनाधिकारी के जीवन में फलीभूत नहीं होता, इसलिए अनाधिकारी को ब्रह्म विद्या देना भी नहीं चाहिए। अब ब्रह्म विद्या की महत्ता बता रहे हैं, स्तुति। वेदांते परमं गुह्यं पुराकल्पे प्रचोदितं प्रशांताय दातव्यं ना पुत्राय शिष्याय वा पुनः। ये ब्रह्म विद्या इतना महत्वपूर्ण है क्योंकि गीता में भी, पूरे गीता के उपदेश के अंत में भगवान श्री कृष्ण ने उस गीता के जो ब्रह्म विद्या है उसके बारे में यही कंडीशन रख दिया है, अर्जुन मैंने तुम्हें जो ब्रह्म विद्या दी है, गीता ज्ञान तुमको जो मैंने दिया है, अब मुझे प्राप्त हो गया करके सस्ती में बेचने नहीं जाना कहीं। ये जो ब्रह्म विद्या मैं तुम्हें दे रहा हूं, मुझे तो प्राप्त हो ही गया करके फिर आगे सस्ते भाव में बेचने नहीं जाना, जो मिला उसी को बुलाओ, ले ओ मेरे पास गीता ज्ञान है आओ। कई बार बड़ी समस्या हो जाता है, कभी यात्रा में कहीं चलो, चलते चलते रास्ते में ही पूछ लेते हैं, महाराज ये ब्रह्म क्या है जी, ब्रह्म की एकता कैसे होती है, मोक्ष कैसे होता है महाराज बताई दीजिए, मुक्ति कैसे प्राप्त हो। अरे बाबा जहां भी हो वहीं तुम पूछ लेते हो, और वहीं बताने लग जाए तो सस्ते में नहीं बेचा गया वो। गीता में तो शर्त ही रख दिया है, चार शर्त रख दिया है, कीलक कील दिया है ब्रह्म विद्या को, चार कील से चार कोना कील देते हैं ना, पहले के गांव में घर में घर बनाते हैं तो घर के चारों कोने में किला गाड़ देते थे, उस घेरे के अंदर भूत प्रेत कोई प्रवेश न करे, उसको कीलक कहते हैं। स्तोत्र आदि में भी कीलक होता है, दुर्गा सप्तशती में कीलक स्तोत्र पाठ है, कील दिया है वो कीले को नहीं उखाड़ोगे तब तक वो स्तोत्र फलीभूत नहीं होगा। महादेवे ने कीलितम, उस कीले को निकालो। इसी प्रकार से गीता में भी कृष्ण ने पूरी गीता ज्ञान को कील दिया है। न च शुश्रूषवे वाच्यम न च यो अभ्यमाम असूयत। हे अर्जुन, जो खुद जिज्ञासा लेकर पूरी तैयारी से सुनने के लिए नहीं आएगा तब तक इसको सुनाना नहीं है, और जो मेरे प्रति संदेह और शंका ही करता रहता है उसको भी नहीं सुनाना। तो उसी तरह यहां भी कर दिया है, ये भी कीलक है वो ब्रह्म विद्या को, उपनिषद विद्या श्वेता स्वतर उपनिषद विद्या को, उपनिषद श्वेता स्वतर ऋषि ने अंत में कील दिया है, इस कीले को जब तक नहीं उखाड़ोगे तब तक उपनिषद विद्या तुम्हारे हृदय में प्रतिष्ठित नहीं होगी। वेदांते परमं गुह्यं पुराकल्पे प्रचोदितम्, सृष्टि के आरंभ में ये ब्रह्म विद्या पुराकल्पे सनत कुमारों को दिया था परमात्मा ने, इसलिए तो दो परंपरा है, नादवंश और बिंदुवंश। हालांकि ये बिंदुवंशों में भी परंपरा चला, जैसे कि वेदव्यास जी ने अपने ही पुत्र सुखदेव को दिया, सुखदेव जी तो उनके बिंदु हैं, उनके पुत्र हैं, लेकिन सुखदेव के साथ साथ औरों को भी दिया, और लोग तो उनके बिंदु वंश के थे नहीं, तो वो लोग नाद वंश के हैं, इसीलिए पुत्र परंपरा और शिष्य परंपरा, दो परंपरा में ये ब्रह्म विद्या फलीभूत होती है। लेकिन चाहे शिष्य हो चाहे पुत्र हो, ये कीलक को निकाले बिना वो फलीभूत नहीं होगा। वह कीलक है ना प्रसन्नताय, यदि तुम्हारा शिष्य भी क्यों न हो, जब तक उसका चित्त शांत नहीं है, प्रशांत नहीं है, तब तक ब्रह्म विद्या फलीभूत नहीं होगा उस शिष्य को। गुरु भले ही दे दे ये मेरा चेला है करके, सुना देवे, उसका कर्तव्य पूरा हो गया, लेकिन शिष्य उस ब्रह्म विद्या को फलीभूत करने के लिए इस शर्त को पूरा करना पड़ेगा, प्रशांत और अप्रशांताय न दातव्यम। आगे कहा अपुत्राय न दातव्यम, पुत्र भी हो मेरा बेटा है इतनी कहने मात्र से ब्रह्म विद्या उसको नहीं देनी चाहिए। पुत्र मोह में ब्रह्म विद्या देकर उसका कोई प्रयोजन सिद्ध होने वाला नहीं है। सुपुत्र को ही ब्रह्म विद्या फलीभूत होती है, कुपुत्र को नहीं। पुत्र किसको कहते हैं? जो अपने कर्तव्य का बोध जिसके पास हो उसको पुत्र बोलते हैं, जिसको कर्तव्य का बोध नहीं है उसको पुत्र नहीं कहेंगे। अखंडानंद जी महाराज जी ने बड़ा मजाकिया व्याख्या कर दिया है पुत्र की है। माता पिता के शरीर से निकलने के बाद 10 महीने मां के गर्भ में रहकर जब निकलते हैं तो सामान्य कह दिया जाता है कि वह उसका पुत्र है। लेकिन उसकी पुत्रता तो तब देखने में आता है कि जब उससे बढ़कर उससे बड़ा हुआ, उसके बाद अपनी माता के प्रति वो कृतज्ञता व्यक्त करता है, सेवा शुश्रूषा और श्रद्धा, आदर सत्कार, सेवा शुश्रूषा और श्रद्धा का भाव रखता है, तभी वह पुत्र है। अन्यथा उपस्थ इंद्रिय से निकलते ही पुत्र नहीं होता है। उपस्थ इंद्रिय से तो मूत्र भी निकलता है, उसको क्या पुत्र कहोगे? वो भी तो उपस्थ है। जिन जिस इंद्रिय से पुत्र का जन्म होता है उसी इंद्रिय से मूत्र का भी तो जन्म होता है, तो मूत्र को पुत्र क्यों नहीं कहते हो? क्योंकि वह बाहर निकलने के बाद दुर्गंध मारता है, इसलिए उसको कोई पुत्र नहीं कहते, उसको मूत्र कह देते हैं। इसी प्रकार से जिसको तुम पुत्र कह रहे हो, बाहर निकलकर तुम्हारे कुल, तुम्हारे खानदान, तुम्हारी परंपरा के विपरीत कर्म करके सबके दुर्गंध का कारण बन रहा हो, गौरव का कारण नहीं बनता और दुर्गंध कलंक का कारण बन रहा हो, तो उसको पुत्र कैसे कहना? वो तो मूत्र ही कहके, जैसे मूत्र का उपेक्षा कर दिया जाता है उसी उसका तिरस्कार और उपेक्षा कर देनी चाहिए। ना पुत्राय न शिष्याय वा पुनः दातव्यम, तो शिष्य में भी प्रशांत शिष्य होना चाहिए। कठोपनिषद में यमराज ने कहा ना विरतो दुश्चरिता न अशांत न समाहित, तो दुष्चरित्र से जो विरत नहीं हुआ है वो, ये सभी ने शर्त रखा है। कठोपनिषद में भी यही शर्त रखा है, यहां भी शर्त रख दिया, गीता में भी रखा है और दुर्गा सप्तशती में तो शिवजी ने रखा ही है। रक्षणीय प्रयत्न न सोयो नीरिव पार्वती, हे पार्वती जो रहस्य मैं तुम्हें बता रहा हूं ये इतनी सुरक्षित रखना कि इसको सार्वजनिक खुला करते हुए नहीं चलना, जैसे तुम अपने उपस्थ इंद्रियों को तुम गुप्त रखती हो, इसी तरह इस विद्या को, इस रहस्य को भी बड़ा छुपाकर रखना। कोई योग्य अधिकारी प्राप्त होवे तभी उसको देना, अन्यथा नहीं देना। उपदेश का उपसंहार है, यस्य देवे पराभक्ति यथा देवे तथा गुरु तस्यैते कथिता यर्था प्रकाशन्ते महात्मनः। जिसके हृदय में परमात्मा के प्रति जितनी श्रद्धा और विश्वास है उतने ही गुरु के प्रति होनी चाहिए, और जिसके हृदय में गुरु के प्रति जितनी श्रद्धा है उतनी परमात्मा के प्रति होनी चाहिए। परमात्मा और गुरु को एक रूप में एक ही प्रकार से जब वो भक्ति करता है तो ऐसे भक्त के हृदय में ही महात्मा न, ऐसे जो महात्मा के हृदय में कथिता यर्था प्रकाशन्ति, उपनिषद अपने कथित अर्थ को प्रकाशित करती है। उपनिषद अपने अर्थों को प्रकाश सबके सामने नहीं करते। शास्त्र भी इतनी चला के इनको जड़ नहीं समझ लेना कि तुम पढ़ लोते हो, अक्षर पढ़ लो और अपनी बुद्धि से अर्थ लगाकर बैठ जाओ। इतनी मात्र से ये शास्त्र अपने रहस्य को प्रकट नहीं करते हैं। इन श्रद्धा से गुरु और शास्त्र पर और ईश्वर पर पूरा विश्वास पूर्वक तुम्हारा हृदय निर्मल हुआ हो, तब जाकर उपनिषद शास्त्र वेदांत विद्या अपने पूरा रहस्य तुम्हारे सामने प्रकट कर देते हैं। प्रशांत प्रकाशंते महात्माना द्वि रुक्ति है यहां, ये द्वि रुक्ति द्वि बार प्रकाशंते महात्माना, महात्माना कथितम एव अर्थ प्रकाशंते, इसलिए वक्ता भी ठीक महात्मा हो और श्रोता भी ठीक महात्मा हो तभी जाकर वक्ता के द्वारा गया गया शास्त्र वह उपनिषद अपने रहस्य उस श्रोता के हृदय में अपने आप प्रकट कर देते हैं। अन्यथा एक शंका के बाद दूसरा, दूसरे शंका के बाद तीसरा, इतने शंका में वह उलझ जाएगा क्योंकि शास्त्र अपने रहस्य खोलते नहीं है। अयोग्य के सामने रहस्य नहीं खोला जाता है। तो ये बहुत दिनों से ये इच्छा थी कि उपनिषद पूरे श्वेता सूत्र उपनिषद पूरा किया जाए, तो हमने श्लोक बांचकर पूरा कर दिया। अन्यथा एक एक मंत्र पर बहुत लंबी व्याख्या भी हो सकती थी। तो और इसके साथ साथ इस वर्ष का ये हमारा एक महीने का कार्यक्रम प्रेमपुरी आश्रम में, तो पहले तारीख से जो प्रवचन और स्वाध्याय की श्रृंखला चल रहा था, तो प्रवचन ये श्रृंखला श्वेता सूत्र उपनिषद ये आज पूरा हो गया है। ये तीन वर्षों में लगातार करते करते ये हो गया है। श्वेता सूत्र उपनिषद पर कितनी घंटे की प्रवचन है? 125 घंटे के प्रवचन ये प्रेमपुरी आश्रम में, ये हमारे द्वारा इसकी व्याख्या की गई थी, उसकी पूरी रिकॉर्ड प्रेमपुरी आश्रम में तैयार है। जिस किसी को पूरी उपनिषद को सीडियो में सुनने की इच्छा हो पुनः, तो वह ऑफिस से प्राप्त कर सकते हैं। ये तो सूचना कार्यकर्ताओं के द्वारा देने की सूचना है, वो हमने दे दिया, ये हमारी दृष्टता हो गई, क्षमा करना। तो अब आगे फिर जो विषय होगा अगले साल फिर आएंगे, अब भी रहेंगे, हम भी रहेंगे। आसुप्ते रामृते कालम नयेत वेदांत चिंतया, ये परंपरा चलती रहेगी। अस्तु, आज बहुत समय ज्यादा हुआ, कल से हम आपके समय को अतिक्रमण नहीं करेंगे। ओम पूर्णमदा पूर्णमिदम् पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रवास्याकृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदाविभागिने व्योमवद् व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम।